समय सार जो कुंदकुंदाचार्य भगवान ने लिखा है, उस समय सार के हम 19 नंबर की गाथा को देख रहे हैं। यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया था कि यह जीव अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा। तब वहाँ उत्तर देते हैं कि जब तक वह जीव कर्म और नो कर्म, ये मैं हूँ या ये मेरे हैं, ऐसी श्रद्धा रखता है, ऐसी प्रतीति करता है, तब तक वह अप्रतिबुद्ध रहेगा। और जिस समय जैसा जिस समय वह अपने स्वभाव को जानकर उस रूप में हूँ ऐसा श्रद्धान करेगा, तब वह प्रतिबुद्ध हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने दो उदाहरण दिए थे। पहले तो क्या, कौन सा उदाहरण दिया कि जो घड़ा है, स्पर्श रस गंध वर्ण और उसकी लंबाई चौड़ाई आदि जो है गहराई, वह घड़े में है, यानी घड़े से ये सारी बातें जुदी नहीं है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण वो घड़े में है और जो घड़ा है उसी में ये सारी बातें हैं। वैसे ही यह जो नो कर्म है और जो कर्म है, वह मैं हूँ या वह मेरे हैं, ऐसा जब तक वह जानेगा तब तक कहते हैं कि उसमें से उसने एकत्व बुद्धि की ना, तो कहते हैं कि वो अप्रतिबुद्ध ही रहेगा। अब दूसरा उदाहरण उन्होंने ये भी दिया था कि वास्तव में जो दर्पण होता है, उस दर्पण में सामने आग है तो आग का प्रतिबिंब झलकता है, तो आग का प्रतिबिंब झलकता है, लेकिन वो प्रतिबिंब जो है वह आग नहीं है। ख्याल में, जो आग तो बाहर में, वो दर्पण को हम हाथ लगाए तो हमको गर्म नहीं लगता है, उष्णता और ज्वाला जो है वह आग की है, और वहां जो दर्पण में जो कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है वह दर्पण की अवस्था है, राग की नहीं। वैसे यहां इस जीव के जो राग द्वेष के या जो कोई विकारी परिणाम हो रहे हैं, वह परिणाम को आत्मा जानता है, लेकिन वह राग है इसलिए जानता है ऐसा नहीं। ये जानने का जो कार्य हो रहा है वो आत्मा का स्वयं के कारण से हो रहा है, ना के राग के कारण से। लेकिन वह कैसा मानता है, जो अज्ञानी होता है तो जो आईने में प्रतिबिंबित ऐसा जो कोई पदार्थ है वह उस पदार्थ का ही परिणमन है ऐसा जानता है। वैसा या जो कुछ राग उस ज्ञान में झलक रहा है वह राग के कारण राग ज्ञान हो रहा है ऐसा मानता है। ख्याल मावेश है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया आईना है, आईने में सामने जो कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब झलकता है। लेकिन यहाँ कह रहे वो जो प्रतिबिंब है वह आईने की अवस्था है, वह सामने वाले वस्तु के कारण इसमें प्रतिबिंब हुआ है ऐसा नहीं है। वैसे यह जो राग आ रहा है शुभाशुभ राग, यह शुभाशुभ राग जो है वह राग ज्ञान में आ रहा है, वह ज्ञान की अपनी स्वतंत्र योग्यता है। वो राग आया है इसलिए उस राग का ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं। राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, वहां ज्वाला या अग्नि भिन्न है, वो प्रतिबिंब भिन्न है। ये दो उदाहरण के द्वारा यहां पर इस जीव को शरीर से यानी नौ कर्म से और कर्म से भिन्नत्व बताया है। और ये भिन्नत्व जब तक वह नहीं मानेगा तब तक वह मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, अप्रतिबुद्ध ही रहेगा। ये बात हमने कल देखी थी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो ये तो पहले दो तीन लाइन तो हमने पढ़ ली थी, हम पृष्ठ क्रमांक 52 पर आए हैं। यहाँ लिखा है आहा आई तो दांडी पीटी ने कहवाई छे के भगवान जिनेन्द्र देव नो कहेलो धर्म तो अलौकिक चीज छे, एवी चीज बीजे क्याय नथी। पन एना घर में एटले कोना? दिगंबर जैन में जेने जन्म लीधो छे एने खबर नथी। कई खबर नथी कि जो जिनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उनको ही मालूम नहीं कि जो जैन कुल में जन्मे है, जैन कुल ऐसा वैसा नहीं, दिगंबर जैन बना है यानी जन्मा है, जो नामधारी जैन या कुलधारी जैन कहते ना उसको भी पता नहीं ऐसा कह रहे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप रूप भाव ए भाव कर्म, यहाँ ये तीन कर्मों की बात ली ना, तो तीनों की यहाँ बातें समझाइए कि पुण्य पाप रूप भाव ए भाव कर्म, ज्ञानावरणादि जड़ कर्म अने शरीरादि नो कर्म ए त्रणे पुद्गल परिणाम छे। देखो यहाँ पुद्गलों के परिणाम बताया है। अभी ये तो कहने की गरज ही नहीं है कि शरीर तो पुद्गल का है, ये कर्म भी पुद्गलमय है, पुद्गल के ही है। और कहते यहाँ जो शुभाशुभ परिणाम जो हो रहे पुण्य पाप के जो भाव है उनको भी पुद्गल के खाते में जमा कर दें। तो समझा रहे हैं एक बात, ए आत्माना तिरस्कार करवा वाला छे, ये तीनों जो है ना वो क्या कहते हैं, आत्मा का तिरस्कार करवा वाला छे। अने बीजी बात, अने आम होवा छता तेमा हूँ छू, अने ए परिणाम मारा मा छे, घड़े में वो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वह घड़ा है, ऐसी बात ली ना। तो यहाँ कहते कि
एक ही बात
है। हाँ जी हाँ,
स्पर्शादि में घड़ा है और घड़े में स्पर्शादि है, ऐसा लेना।
क्या क्या फिर से मैंने कुछ गलत बताया?
आपने एक ही बात अलग अलग पद्धति से बताई।
अच्छा तो आपको क्या कहना है?
स्पर्शादि भावों में घड़ा है और घड़े में स्पर्शादि भाव है, ऐसा कहना चाहिए। आपने ऐसा कहे कि घड़े में स्पर्शादि है और जिसमें स्पर्शादि है वो घड़ा है, यानी एक ही एक बात हो गई।
गलत होगा ठीक है, जो आपने बताया
यानी द्रव्य अपने गुण पर्याय में बसता है ना, तो यहाँ पुद्गल की बात की, तो जैसे वो घड़ा अपने गुण पर्याय में बसता है और वो घड़े में गुण पर्याय है उसके, वैसे ये अज्ञानी जीव क्या मान रहा है कि मेरे में कर्म नो कर्म है और कर्म नो कर्म में मैं हूँ या हाँ। तो यह जब तक ऐसी मान्यता है, यानी जैसे पुद्गल के गुण पुद्गल में है और पुद्गल के गुणों में पुद्गल है, वैसे अगर आत्मा में कर्म नो कर्म है और कर्म नो कर्म में आत्मा है, ऐसे जब तक मान्यता है तब तक वो अप्रतिबुद्ध है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। कुछ ख्याल में आता है नहीं आता, होता ही है, परंतु वैसा आत्मा में आत्मा के गुण या आत्मा के गुणों में आत्मा है ऐसा नहीं मानकर राग में आत्मा है, शरीर में आत्मा है, कर्म में आत्मा है या वही आत्मा है ऐसा हमने माना था, ख्याल है? यानी जैसा पुद्गल के बारे में माना वैसा ही, वो तो ठीक है, दृष्टांत दिया वो सही है कि ऐसा ही है कि स्पर्शादि में घड़ा है और घड़े में स्पर्शादि है, परंतु वैसा इसने आत्मा को भी, यानी कर्मों में आत्मा है या राग में आत्मा है, पुण्य पाप के भाव में आत्मा है और आत्मा में पुण्य पाप भाव है ऐसा मान लिया, यानी दृष्टांत तो ठीक है परंतु जो वहां है वैसे या इसने दो द्रव्य में मान लिया, दृष्टांत में तो एक द्रव्य की बताया वो तो बराबर है, परंतु जैसे एक द्रव्य उसके गुणों में है या गुणों द्रव्य में गुण है वैसा इसने आत्मा में कर्म नो कर्म है और नो कर्म उसमें आत्मा है ऐसा मान लिया, ख्याल है ना? ये दृष्टांत, हाँ, जैसे द्रव्य और गुण पर्यायों में अभेदता है वैसी अभेदता इसने कर्म नो कर्म के साथ मान ली है, और जब तक ऐसी मान्यता बनी रहेगी तब तक ये अप्रतिबुद्ध है।
दो भिन्न द्रव्य होते हुए भी उनमें एक पना मान रहे,
ये राग को भी परद्रव्य में डाला है, यहाँ राग में भी जब तक मैं पना की बुद्धि है या यह मेरा है ऐसी बुद्धि है तब तक वो अप्रतिबुद्ध है, ये इतना समझ लेना इसका, क्योंकि दृष्टांत में तो जो सही है वो मान बता रहे हैं, परंतु वैसा ये आत्मा और अन्य द्रव्यों में लगा रहा है ये उसकी भूल है, ये बात बताना चाहते हैं।
देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये ऊपर से पांचवी लाइन है, अने आम हुआ छता, यानी वो जो सारी जो परिणाम है जो कौन से भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म ये आत्मा के तिरस्कार करने वाली चीज है, फिर भी आम हुआ छता तेमा हूँ छू, यानी इन तीनों में मैं हूँ, ये तीनों में मैं हूँ यानी मैं आत्मा हूँ, अने ए परिणाम मारामा छे, एम वस्तुना अभेद थी जहाँ सुधी अनुभूति छे, यानी वैसा ही मैं हूँ ऐसा जो मान रहा है और वैसा ही स्वयं को समझ रहा है अनुभूति वैसा कर रहा है त्या सुधी आत्मा अप्रतिबुद्ध छे मिथ्या दृष्टि छे, शू कहे छे शुभ राग आदि पुद्गल परिणाम छे, ए जीव स्वभाव में तो नहीं पण जीवनो तिरस्कार करवा वाला छे, तेथी पुण्य भाव आदि भाव कर्म तथा शरीर मन वाणी स्त्री कुटुंब परिवार आदि नो कर्मनो प्रेम आदर करीश वा तेथी पोताने लाभ छे एम मानीश तो भगवान आत्मानो अनादर थशे, यानी हमारी पूरी दृष्टि परद्रव्य पर है और उससे हम अपना भला होगा ऐसा मानते हैं तो कहते वो तो भाव कैसे है आत्मा का अनादर करने वाले, तो उससे तुझे अपनी प्राप्ति कैसी होगी, आ त्रणेमा अभेद पने अनुभूति ये तो मिथ्या दर्शन अने अज्ञान छे।
देखो ये अभेद अनुभूति के ऊपर से हम ऐसा देखेंगे कि जो शुद्ध नय का विषय देखा था हमने पहले तो वहाँ अभेद अनुभूति करना चाहिए ऐसा कहा था, और यहाँ अभेद अनुभूति का निषेध कर रहे ऐसा क्यों? हाँ, वो अपने में जो भेद है वो भेद को गौण करके अभेद अनुभूति की बात की, मैं स्वयं एक अखंड अकेला, और यहाँ जो मैं नहीं हूँ ऐसे परद्रव्यों में अभेदपना की अनुभूति हो रही है, मैं एक मैं हूँ उसमें और अन्य को जोड़ जोड़ कर उसमें मैंपना की अनुभूति हो गई है, शरीर के साथ अभेदपना हो गया, इसको कर्म के साथ उसके फल के साथ अभेदपना हो गया, राग द्वेष के साथ अभेदपना हो गया, तीनों को लिया ना द्रव्य कर्म भाव कर्म मनोकर्म तीनों को मिलकर मैं अभेद अखंड हुई है ऐसा इसने मान लिया, ये उसकी अभेद अनुभूति है, अनुभूति तो हो रही है मैंपना तो है परंतु मैं किसमें, जितना मैं हो उतना मैं नहीं मानकर उसमें और अन्य को भी मिला दिया, एक्स्ट्रा ले लिया उसमें और सबको मिलकर अभेद कर दिया, ये अभेद अनुभूति हो गई उसकी। आप कहेंगे अनुभूति तो अच्छा है ना, तो आगे पूछ रहे, देखो
देखो वही प्रश्न बता रहे, पहले तो ऊपर बताया कि अभेद बने अनुभूति करे छे।
इंदु बहन कहते ये अनुभूति बिना प्रयत्न की होती है, बहुत बड़े पुरुषार्थ से होती है। इसमें पुरुषार्थ है कि नहीं है, उल्टा है।
यहाँ पर ये कहते हैं विभाव भाव जो चल रहा है, उस विभाव भाव में पुरुषार्थ लगता होगा क्या? नहीं। हाँ जी, हाँ वही तो वो जो परमे जो रमणता हो रही है, उस क्रिया में विभाव जो चल रहा है उसमें पुरुषार्थ करता होगा कि नहीं है जीव? करता है कि नहीं, इतना बोलो। फिर कौन सा है वो बताओ आप। देखो भाई,
देखो जो पर्याय हो रही है उस पर्याय के योग्य पुरुषार्थ वहां चल रहा है। मिथ्यात्व अज्ञान है तो उसके योग्य पुरुषार्थ चल रहा है वहाँ।
सुनो सुनो, और नजदीक चलो। कोई भी जो कार्य होता है उसमें पांच समवाय तो लगते ही है, और उस पांच समवायों में एक पुरुषार्थ नाम का समवाय भी है। तो यहाँ तो गुरुदेव कहते हैं कि विभाव करने में भी यह विभावेश्वर है। कैसा ईश्वर है? विभावेश्वर। और स्वभाव करेगा तो स्वभावेश्वर है। तो वो जो ईश्वरता जो है, इतना जो कुछ करना है तो उसमें भी उसका पुरुषार्थ लगेगा कि नहीं? तो कहते इतना लगाता है कि बिल्कुल वो विभाव का ईश्वर हो जाता है।
तो जड़ का कार्य करे तो जड़ेश्वर होगा कि नहीं होगा? कर ही नहीं सकता। जड़ अपना ईश्वर है, जड़ अपना ईश्वर है।
देखो देखो, आप मैं लौकिक उदाहरण देता हूँ। जो कोई कार्य करना है, समझ लीजिए कि चोरी करनी है, वो कोहिनूर हीरा है ना इंग्लैंड में, उसको लाना है, तो लाने वाले को उतना बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं? सबकी नज़र को ये करके उधर से निकाल के लावे, तो चोरी करने में भी पुरुषार्थ लगता है, वो तो खोटा काम है ना। वैसे आत्मा में जाने में भी पुरुषार्थ लगता है, आत्मा का अनुभव करने में भी पुरुषार्थ लगता है। तो आपने इंदुबेन कहती कि वो तो बिना सिखाए बिना कुछ तकलीफ किए अपने आप, नहीं नहीं आपको लगता है अपने आप, लेकिन उसमें पूरा आपका पुरुषार्थ यानी वीर्य गुण व्यर्थ जा रहा है आपका, यानी आपका नहीं जो ऐसा करते उनका। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो हर एक की बात है भाई। यहाँ तो देखो कैसी स्वतंत्रता बताई है, यहाँ तो समझा रहे हैं कि भाई ये एक द्रव्य की बात नहीं, जीव द्रव्य की बात नहीं, छह द्रव्यों में वीर्य नामक गुण है, क्योंकि छह द्रव्यों में पुरुषार्थ तो हर पर्याय में चल रहा है। ऐसी स्वतंत्रता है ख्याल में। तो अभी कहते हैं अभेद में अनुभूति ये तो मिथ्या दर्शन छे अज्ञान छे। तो प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा कि अनुभूति छे तो पन अज्ञानी, यानी अनुभूति कर रहा है फिर भी अज्ञानी कह रहे हैं आप, ये बहुत अन्याय है। कहते ए अनुभूति छे एमा शू, ए तो जड़नी अनुभूति छे, अज्ञान छे, एने अनुभूति केताज नथी। अनुभूति एटले अनुभवूं, एटले थवूं, स्वने अनुसरीने थवूं, परिणमवूं एटले पोताना दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव ने अनुसरीने थवूं, परिणमवूं, तेने आत्माने अनुभूति कहे छे। परंतु जड़ने रागने अनुसरीने थवूं, परिणमवूं, ए आत्मानु अनुभूति नथी। पहला यानी इन द बिगिनिंग बीजी गाथा में आ वात आवी गई, बीजी गाथा में आ आवी गयु छे, यानी वहां स्व समय और पर समय ऐसी बात आई थी ना, तो ये पर समय की बात है, यानी ये जीव पर में ही अटका हुआ है और उसका ही अनुभव कर रहा है। हम कहते हैं ना, देखो साहब वैसा तो मैं शांत हूं लेकिन गुस्सा आया तो मुझे पूछना मत, मैं बहुत गुस्सेदार हूँ, यानी अपने को वो राग स्वरूप अनुभव करता है, यहाँ बताए ना। શું કહ્યું? જડ કર્મ અને શરીરાદી નો કર્મ એ તો પુદ્ગલ પરિણામ છે જ, પણ આ આત્મા જે એક જ્ઞાયક ભાવ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ચૈતન્ય ચમત્કાર વસ્તુ છે, તેમાં થતા ક્ષણિક પુણ્ય પાપના જે ભાવ, તે પણ પુદ્ગલ પરિણામ છે, અચેતન છે, એ ચૈતન્ય ચમત્કાર જ્ઞાયક ભાવરૂપ આત્મા એક વસ્તુ અને પુણ્યપાપ ભાવ એ બીજી વસ્તુ, આ બે વસ્તુ ભિન્ન હોવા છતાં, યાને દોનો અલગ અલગ હૈ, ક્યુકે ઉસકો તો ઉન્હોને પુદ્ગલ કે ખાતે મેં જમા કરી દિયા ના, ક્યુકે વો સ્વભાવ ભાવ નહીં હૈ, ઇસલિયે ઉસકો વિભાવ કો જિસકે કારણ સે વિભાવ રહે ઇસી મેં જમા કરી દિયા. તો કહેતે હૈ વસ્તુ બે વસ્તુ ભિન્ન હોવા છતાં દ્રષ્ટિમાં જ્યાં સુધી બંનેમાં એકપનાની અભેદ બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી આત્મા અપ્રતિબુદ્ધ અજ્ઞાની છે, પછી ભલે લાખો શાસ્ત્રો ભણ્યો હોય.
જ્યાં સુધી પુણ્ય પાપના ભાવ છે ત્યાં સુધી એમ નથી લખ્યું, ફિર પડના જબ તક પુણ્ય પાપ કે ભાવ હૈ તબ તક એસા નહીં કહા ઇન્દુબેન, ક્યાં કહા? જબ તક યે દોનો મેં એક પના કી એકત્વ બુદ્ધિ હૈ, અભેદ પના કી બુદ્ધિ હૈ.
નીચે સે દૂસરી લાઇન મેં
એને રાગ ભાવ તો હોગે, પર્યાય મેં રાગ હૈ, ફિર ભી ઉસ રાગ કે સાથ યે જીવ જબ તક એકત્વ કર રહા હૈ, અભેદ પના દો ભિન્ન હોતે હુએ ભી દોનો કો એકમેક કર રહા હૈ, એકમેક માન રહા હૈ, બુદ્ધિ યાને વો માન્યતા મેં લે લેના, એકત્વ પના કી બુદ્ધિ, યાને વો રાગ ભી હોગે, રાગ કો જાનેગા ભી, પરંતુ યહ મેં હું યે મેરે હૈ એસી બુદ્ધિ જબ તક હૈ, યે માન્યતા કા દોષ હૈ, એસી બુદ્ધિ હૈ તબ તક યે અજ્ઞાની હૈ. ખ્યાલ હૈ ના? રાગ હોને કા યહાં નિષેધ નહીં હૈ, રાગ હૈ, પરંતુ હોતે હુએ ઉસકો ભિન્ન જાનના થા, ભિન્ન અનુભૂતિ કરની થી, તો વો અભેદ અપને મેં મિલા દિયા સબકો, ઓર યે સબ મિલકર મેં હું. જબ જબ દૃષ્ટિ કહેતે તો દૃષ્ટિ કા વિષય મેં હોતા હૈ, તો ઇસને મેં કે ખાતે મેં ઓર સબકો બહોત સારા માલ ઉસમે લે લિયા, તો યે ઉસકી એકત્વ બુદ્ધિ અન્ય ચીજો કે સાથ હો ગઈ, તો યે ઉસકી અજ્ઞાન હૈ, યે ઉસકા અપ્રતિબુદ્ધપના હૈ.
યે આપ દિયા ના નીચે સે દૂસરી લાઇન મેં, દૃષ્ટિમાં, દૃષ્ટિમાં એને માન્યતામાં, જ્યાં સુધી બંનેમાં એકપનાની અભેદ બુદ્ધિ છે, યાને જબ તક વો એ દોનો મેં એક હી હૈ, હું આ છું ને એ મારા છે, એસી વાત હો ગઈ ને, તો ત્યાં સુધી આત્મા અપ્રતિબુદ્ધ એટલે અજ્ઞાની છે. ઓર એક વાત બતાવી, પછી ભલે લાખો શાસ્ત્રો ભણ્યો હોય, યાને જ્ઞાન કા ઉઘાડ ચાહે જીતના હો, જબ તક શ્રદ્ધા સહી નહીં હૈ, તો એ બાકી સબ બાતે કાર્યકારી નહીં. આય કોઈ કહે કે આત્મા આમાં જરા ઢીલું કરો, થોડો રાગથી લાભ થાય અને થોડો રાગથી લાભ ન થાય, એમ સ્યાદ વાત કરો, તો આપણે બધા એક થઈ જઈએ. પણ ભાઈ, આમાં ઢીલું મૂકવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે? ત્રિલોકીનાથ ભગવાન અને સંતો જાહેર કરે છે કે તું ચૈતન્ય ચમત્કારી વસ્તુ છે, ચમત્કારી અને અદ્ભુત. તારામાં ચૈતન્ય ચમત્કારની ઈશ્વરતા ભરેલી છે, એવા નિજાત્મ સ્વરૂપને દયાદાન વ્રત ભક્તિ આદિ શુભભાવ રૂપ જાણે અને માને, એ શુભભાવો મારા છે અને એથી મને લાભ એટલે ધર્મ થશે એમ માને તો મિથ્યાદૃષ્ટિ અજ્ઞાની છે, મૂળ છે. ઓર આગે ક્યાં સર્ટિફિકેટ દિયા? શેડ્યુલ કાસ્ટ વાલા કહેતે જૈન નથી, ક્યા કરે? યે તો એસા સમજા રહે કે તું જબ તક આત્માનુભૂતિ નહીં કર રહા હૈ તો તું જૈન નહીં. જા પહેલે મેં પહેલે તો હમકો યહી સિખાયા થા કે જૈન કિસે કહેના, તો કહેતે કે જિસને મોહ કા અભાવ કિયા હૈ, યે દ્રવ્યાનયોગ કી અપેક્ષા સે યે કથન હૈ, કર્ણાનયોગ મત લગાના, કે જિસને મોહ કા અભાવ કિયા ને મિથ્યાત્વ કા અભાવ કિયા હૈ ઓર આંશિક રાગ દ્વેષ કો નષ્ટ કિયા હૈ, ઇસકા અર્થ ક્યા? જિસકે દર્શન મોહની કર્મ કા અનુદય હૈ, અભી કર્ણાનયોગ, ઓર અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયા લોભ કા ઉદય નહીં હૈ, વહ જૈન. और हमने तो जैन कुल में जन्म लिया मसवड़ में, और माना कि हम जैन हैं, क्यों क्या करें, हमको ऐसे ही पहले से अपनी मान्यता थी ना, वो तो हम जब छोटे थे शोलापुर में तब ये पर्युषण पर्व या दिवाली के दिन मंदिर में जाने का, सुबह सुबह उठ उठ के जल्दी जल्दी, क्योंकि घर में 10-12-15 मेंबर सबको तैयार होते होते टाइम हो जाए, मंदिर में जाके नमस्कार वगैरह करके इतनी घाई घाई से क्यों जाना, क्योंकि हमारी ऑयल मिल थी, उधर जाने के बाद उधर मिठाई विठाई सब खाने को मिलती थी, वो हमको याद था, वो करने के लिए तो हम भगवान के दर्शन करें तो स्वयं को ऐसा मानते थे कि हम कितने धार्मिक हैं, हाँ हमने ऐसा किया वैसा किया, यहाँ तो कहते तू जैन नहीं केम के तूने आत्मा का अनुभव नहीं किया इसलिए जा, ये बचपन से ऐसे सीखे आए ना हम, तो वो सही थोड़ी होता है, इसलिए ये बात सत्य बात अपने ख्याल में आनी चाहिए। अभी यहाँ क्या समझाते देखो, नवा मानस ने जरा आकरू लागे, पहला सांभळ्यू होय ने के पहला सांभळ्यू होय ने के व्रत तप यात्रा आदि करो एटले धर्म थई जशे, पण कोनी यात्रा भाई, बार नी के अंदर नी, अभी यहां ये समझा रहे देखो, नवा मानस ने जरा आकरू लगे, यानी कोई नया ने अभी सुनने को आया है और उसको कहेंगे कि तू जैन नहीं है तो भड़क जावे इसलिए कहते पहला सांभळ्यू न होय ने, अने मानेलू शू होय के व्रत तप यात्रा आदि करो शिखरजी जाई आओ तो तमे बहु धार्मिक थई गया એટલે ધર્મ થઈ જશે, પણ કોની યાત્રા ભાઈ, બહારની કે અંદરની, તીર્થે જાઓ પણ કયું તીર્થ, આત્માની અંદર કે આત્માની બહાર, કાંઈ ખબર ન મળે બિચારાને, ભગવાન આત્મા સ્વયં તીર્થ રૂપે દેવ રૂપે છે, એ પરમાનંદ સ્વભાવવાળું દ્રવ્ય છે, તેમાં અંદર યાત્રા કરે એટલે અંદર જાય એ ધર્મ છે, બહારની યાત્રા એ તો રાગની ક્રિયા છે, એ રાગ ક્રિયા જે આત્માનો તિરસ્કાર કરવાવાળી છે એનાથી લાભ થશે એવી માન્યતા તો અપ્રતિબુદ્ધ અજૈનની છે ભાઈ, વ્રત તપાદી શુભભાવ એ તો પુદગલના પરિણામ છે, અચેતન છે, જે ભાવે તીર્થંકર ગોત્ર બંધાય એ ભાવ પુદગલ પરિણામ છે, यानी यह जो किसको तीर्थंकर गोत्र मतलब तीर्थंकर प्रकृति बनती है कि जिसके, हाँ जी हाँ, लेकिन वो बंद करता है तो क्या करता होगा, सम्यक दर्शन कारण होगा कि नहीं उसका, तो हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि किसके यह तीर्थंकर प्रकृति बनती है कि जिसके उच्चतम शुभ परिणाम है, वो तो जीव ऐसा सोचता है कि यह सच्चा मार्ग पूरे विश्व को मिले, ख्याल में उसमें मेरा नाम हो जाए, मेरे को सब खम्मा खम्मा करे, ऐसी थोड़ी उनके परिणाम होते हैं, ये तो कह रहे हैं कि भाई पूरे विश्व को ये सच्ची बात मिले और वो मोक्ष प्राप्त करें, तब ये तीर्थंकर प्रकृति बनती है, और ऐसे उच्च प्रकार के शुभ परिणाम सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, हम भले चाहे जितना कहें पर अपने को सम्यक दर्शन नहीं होगा तो तीर्थंकर गोत्र नहीं बंधेगा, और तीर्थंकर गोत्र बंधे नाम करो तीर्थंकर गोत्र ही कहते हैं, तीर्थंकर प्रकृति बंधे इसके लिए जानबूझकर शुभ भाव करने जाए तो भी कहते उसको बंधेगी नहीं, ख्याल में, क्योंकि किस आशा से अभिलाषा से वो जा रहे हैं ना, तो हमने तो गा गा कर षोडश कारण भावना का पूजा की जोर जोर से, हाँ तो उसको नहीं बंधेगी, यानी क्या कहते हैं, ए राग क्रिया जे आत्मानो तिरस्कार करवा वाली छे नाथी लाभ माने ये एवी मान्यता छे, ए अप्रतिबुद्ध अजैन नी बात छे, भाई व्रत तप आदि शुभ भाव ए तो पुद्गलना परिणाम छे, अचेतन छे, जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाय, ए भाव पुद्गल परिणाम छे, अचेतन छे, एमा चैतन्यनी जात नथी, तेथी ए शुभ रागादि भाव कर्म, द्रव्य कर्म तथा शरीरादि नो कर्म ए बाह्य वस्तुओ साथे जा सुधी एकपनानी अभेद अनुभूति छे त्या सुधी ते अप्रतिबुद्ध छे। ये ऊपर जो अनुभूति छे तो पन अज्ञानी जो है ना उसका उत्तर अभी चल रहा है। बहिरात्मा छे तथा ए त्रणे पुद्गल परिणामों बाह्य चीज होवा थी मारा पोतानामा नथी एम मानी। अब यहाँ कैसा सम्यक दृष्टि होगा, जे पोतानो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव रूप एक न्यायक भाव आत्मा छे तेवी श्रद्धा करी तेनी साथे ज एकपनानी निर्मल ज्ञान आनंदनी अनुभूति करे ते अंतरात्मा छे। पोताना ज्ञान दर्शन चारित्र आदि नी पूर्ण दशा प्रकट थवी ए परमात्मा छे। आ बहिरात्मा अंतरात्मा अने परमात्मानी व्याख्या छे। पहला घड़ानु दृष्टांत आप्यु, हवे दर्पणनु दृष्टांत आपीने समझावे छे। जेम रूपी दर्पणनी स्वपरना आकारनो प्रतिभास करनारनी स्वच्छता ज छे अने उष्णता तथा ज्वाला अग्निनी छे। शुं कहे छे देखो अभी क्या कहना चाहते। पहला हम समझेंगे कि जिस तरह ये रूपी दर्पण जो है वो कैसा परिणमित हो रहा है कि स्व और पर के आकार के साथ प्रतिभास करनारी स्वच्छता ज छे। यानी हम दर्पण को कैसा पहचानते हैं, ये दर्पण है कि ये क्यों नहीं, क्योंकि इसमें स्वच्छता नाम का गुण ही नहीं है कि जिसमें कुछ रिफ्लेक्टिविटी नहीं है और वो दर्पण है। ये दर्पण है क्योंकि उसमें हमारा रिफ्लेक्शन भी दिखता है कोई ना कोई चीज का। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जेम रूपी दर्पणनी स्वपरना आकारनो प्रतिभास करनारी स्वच्छता ज छे। तो हमने वो स्व की स्वच्छता देख के हम कहेंगे कि ये दर्पण है, फिर उसमें दूसरे कोई पदार्थ झलकते पर आकार रूप था तो वह भी दर्पण है। इसलिए क्या कहा, रूपी दर्पणनी जेम रूपी दर्पणनी स्वपरना आकारनो प्रतिभास करनारी स्वच्छता ज छे और उसमें झलकने वाली जो उष्णता तथा ज्वाला अग्नि नी छे कि वो तो दर्पण में घुसी हुई नहीं है लेकिन उसका प्रतिबिंब है। शू कहे छे जारे दर्पण नी सामे अग्नि होय त्यारे दर्पण मां जे प्रतिबिंब अग्नि जेवो आकार देखाय छे ते दर्पण नी स्वच्छता नी पर्याय छे पण अग्नि नी पर्याय नथी। अभी समझ लेते हैं हम कि हम क्या नाम है कश्मीर में वो किधर गुलमर्ग क्या क्या कुछ पहलगाम जो कुछ होता है मेरे जानता नहीं, तो उधर पीछे तो ऐसा पहाड़ पे तो बर्फ बर्फ दिखता हो या तो हम जहां बैठे वहां बर्फ दिखता है और वहां ये आग जला के जरा गर्म ये कर रहे हैं सेक रहे हैं अपने को और दर्पण रखा हो तो दर्पण में तो दोनों झलकते हैं तो दर्पण ठंडा होगा या गर्म होगा, ख्याल में है ना, उसका जो परिणमन होगा वो जुदा होगा ना कि वो बर्फ के कारण वो ठंडा हुआ है और ना बर्फ के कारण वो गर्म हुआ है, दोनों प्रतिबिंबित होते हैं। फिर भी वो जो कोई है वह परिणमन जो है वह दर्पण का है और या आग का या बर्फ का नहीं है, ये बताना चाहते हैं। अब क्या समझा रहे देखो शू कहे छे थर्ड लाइन, जारे दर्पण नी सामे अग्नि होय त्यारे दर्पण मां जे प्रतिबिंब एटले अग्नि जेवो आकार देखाय छे ते दर्पण नी स्वच्छता नी पर्याय छे पण अग्नि नी पर्याय नथी। अग्नि की पर्याय अग्नि में होगी क्या दर्पण में होगी, ये बात हम ख्याल में रहे ना, जहां द्रव्य है वहीं उसका उसकी पर्याय होगी। जे बहार मां ज्वाला अने उष्णता छे ते अग्नि ना छे परंतु दर्पण मां जे प्रतिबिंब देखाय ते तो दर्पणनी स्वपरना आकारनो एटले स्वरूपनो प्रतिभास करनारी स्वच्छता ज छे। तेवी रीते अरूपी आत्मानी तो पोताने ने परने जाननारी ज्ञातृता, ज्ञातृता ने ज्ञातापणु एज छे, अने कर्म तथा नो कर्म पुद्गलना छे। ये समझ में आ रहा है ब्रह्मबेन? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अभी यहाँ क्या कहते हैं, वो जानने में तो दोनों आ रहे, किसको? आत्मा को। क्या क्या आ रहा है? स्व भी जानने में आ रहा है और पर भी जानने में आ रहा है। अब तो क्या समझा रहे हैं? देखो फिर से वो ऊपर से सातवीं लाइन हो गई, छठी तीन और चार साथा। तेवी रीते अरूपी आत्मा नी तो पोता ने परने जाननारी ज्ञातृता एटले ज्ञातापणू ज छे, अने कर्म तथा नो कर्म पुद्गलना छे। शुं कहे छे? राग एटले दया दान पुण्य पाप आदि जे विकल्प एना आकारे एटले ज्ञाकारे ज्ञान थयुं, ए तो ज्ञाननी पर्याय छे पण रागनी नथी। ये देखो क्या समझा रहे हैं? ये ज्ञान है तो ज्ञान में क्या जाना जा रहा है कि स्व को भी जान रहा है पर को भी। अभी स्व को छोड़ो, वो पर को जो जान रहा है, किसको जान रहा है अभी? वो अग्नि को, बर्फ को नहीं। जो राग उत्पन्न हो रहा है किसमें? अपने में ही। उस राग को वह जान रहा है। तो राग को जान रहा है तो यहाँ कहते हैं यहाँ राग पैदा हुआ इसलिए इस ज्ञान ने जाना है, ऐसा नहीं। तो ज्ञान तो ज्ञान रूप से परिणमित हो रहा है और राग तो राग रूप से परिणमित हो रहा है, दोनों का समय एक है। तो उस समय ये ज्ञान को ऐसा राग जानने का उसकी पर्याय हुई, तो यहाँ कहने में आया कि राग के कारण उसने जाना। पर वास्तव में राग के कारण जाने आत्मा या ज्ञान तो वह ज्ञान परावलंबी हुआ। इसलिए कहते वहां जो दर्पण में जो दिख रहा है वो दर्पण की अवस्था है, यहाँ ज्ञान में जो जाना जा रहा है वो ज्ञान की अवस्था है लेकिन वो राग की अवस्था नहीं है, वहां अग्नि की अवस्था नहीं है। ये बात ख्याल में आ गई? यहाँ दर्पण को और आत्मा के ज्ञान को एक जगह रखा और वहां अग्नि को और यहाँ राग को एक साथ रखा, मतलब एक कैटेगरी में। तो वहां अग्नि दर्पण में दिख रहा है पर वो अवस्था दर्पण की है, यहाँ ज्ञान में राग झलक रहा है वो अवस्था ज्ञान की है। भाई ख्याल में बात आती है? बहुत आसान है हा? अब क्या समझाते फिर से देखेंगे हा? देखो शू कहे छे बीच में है ना, अभी राग दया वहां से फिर से दोबारा पढ़ूंगा। राग दया दान पुण्य पाप आदि जे विकल्प एना आकारे एटले ज्ञाकारे ज्ञान थयुं। अभी वो इसको ज्ञाकार क्यों कहते हैं? क्योंकि बात ऐसी ना, ज्ञान तो हमेशा नियम से समझना, ज्ञानाकार ही रहता है, यानी क्या वो ज्ञान रूप से ही परिणमित होता है। तो ये कब से परिणमित होता है? साहब बोलते अनादि से परिणमित। अच्छा जानता है जानता है जानता है जानता है हमेशा जानता है। हाँ बिल्कुल जानता है जानता है जानता है, अरे किसको जानता है? तो किसको जानता है ये जब सवाल उठेगा तो वो हमको गेय पदार्थ के माध्यम से बताना पड़ेगा कि अभी माइक को जानता है, अभी पट्टी को जानता है, अभी पेंसिल को जानता है। तो जानना 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 तो कॉमन है, पर वो क्या जानता है, किसको जानता है ये बताना होगा, तो हमें दूसरे का आधार लेना पड़ता है। तो अभी पट्टीकार ज्ञान हुआ, पेंसिल आकार ज्ञान हुआ, ये वो गेयाकार ज्ञान हुआ, ऐसा कहेंगे अभी गेय के पदार्थ के माध्यम से। तो क्या कहते हैं कि पुण्यपाप आदि जे विकल्प एना आकारे एटले ज्ञाकारे ज्ञान थयुं, ए तो ज्ञाननी पर्याय छे, ज्ञान ही उस रूप परिणमित हुआ है, रागनी नथी। अभी ये बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल बराबर है, वहां दो द्रव्य में बात है, यहां पर भी राग को पुद्गली का है। हाँ तो आप पर्याय की अपेक्षा देख रहे हैं, यहां द्रव्य की अपेक्षा से समझा रहे हैं। ज्ञान के स्वभाव में राग है क्या? तो ये पर्याय की बात है या स्वभाव की यानी द्रव्य की बात है? देखो देखो ऐसी बात होती है, जब यहाँ कोई बात जिस अपेक्षा से समझाई जा रही है वो अपेक्षा न समझ के हमारे मन में जो अपेक्षा है उसी से हम थिंक करेंगे तो ये बात का क्या कहते हैं वो सुलझाई नहीं जाएगी। यानी यहाँ तो यही समझा रहे हैं कि यह राग जो है वो भले उस जीव द्रव्य में ही पैदा होता है लेकिन वो पहले बता ना क्षणिक परिणाम छे और मैं कैसा हूँ त्रिकाल हूँ इस अपेक्षा से वो मेरा नहीं है और मैं जानने लायक हूँ जानन स्वभावी हूँ और ये जो राग है वो ना स्व को जानता है ना पर को जानता है और मैं तो स्व पर प्रकाशक हूँ। इस अपेक्षा से इस भाव कर्म को भी पुद्गल में डाल दिया क्योंकि यहाँ दृष्टि का जो विषय है यानी जो श्रद्धा का विषय यानी पूर्ण द्रव्य जैसा है वैसा उसको हम जाने इसलिए इन सारी बातों को उसमें से हटा दिया। तो आपका जो कहना है वह एक दो द्रव्यों की बात ली थी यहाँ तो एक द्रव्य में ही ये बात ले रहे हैं एक अपेक्षा से आपका बात भी कहनी बराबर है पर वहाँ वो अपेक्षा नहीं लग रही है यहाँ तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा लग रही है और इसको पहले से बताया था कि आ त्रणय पुद्गलना परिणाम छे आई थी ना बात तो वो आपका जो वो जो क्वेश्चन है वो तो रूल आउट होता है क्योंकि पहले उसको पुद्गल के खाते में डाल दिया। अब यहाँ ये समझा रहे हैं कि भाई वो जब त्रिकाल नहीं है मैं त्रिकाली हूँ उस अपेक्षा से भी लो या तो वो पुद्गल में खाते में डाल दिया है इस अपेक्षा से भी लो ये दोनों की भिन्नता है। और यहाँ तो स्वभाव को हमको समझा रहे हैं पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वो चारित्र गुण की विभाव पर्याय है।
शास्त्र में इसको स्फटिक के उदाहरण से समझाया है। स्फटिक कभी देखा आपने कैसा है कौन से कलर का ट्रांसपेरेंट होता है और फिर उसके बाजू में किसी एक साइड में उसको एक लाल डॉट लगा दो तो कैसा दिख रहा है पूरा लाल है। तो हम आपको पहले हमने पूछा था स्फटिक कैसा है तो आपने बताया था ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल निर्मल है और आप कहते अभी वो पूरा लाल हो गया तो वो लाल है कि ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट परंतु अभी वो लाल क्यों हुआ है क्योंकि वो लाल के नज़दीक में संयोग में स्वयं पूरा लाल हो ऐसी भी योग्यता स्फटिक की है परंतु वो लाल रंग वो उसका अपना नहीं है वो संयोग के कारण हुआ। वैसे आत्मा का तो ज्ञायक स्वभाव ही है ज्ञान ही है तो ज्ञान है तो सिद्धों को होता है कोई राग द्वेष नहीं होता क्यों नहीं होता पर्याय में क्यों है। जैसे स्फटिक निर्मल कब है अभी जो ऐसा हम पकड़ेंगे वो चिमटी में तो किसी रंग के साथ रखो तो वो तो लाल पीला नीला दिखेगा ही है ना। तो सिद्ध भगवान केवल ज्ञान रूप है कि उनके कोई कर्म का उदय नहीं है तो ये राग द्वेष में अभी जो निमित्त की तरफ हम देखेंगे तो कर्म के उदय के बिना यहाँ राग द्वेष नहीं पाए जाते हैं जीव में क्योंकि सिद्धों में हम देखते हैं वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है वहाँ कर्मों का उदय भी नहीं है जीव स्वयं अपनी योग्यता से राग द्वेष होता है परंतु सामने तब कर्म का उदय पाया जाता है इसलिए उसकी तरफ देखकर वो पुद्गल का है कहेंगे राग पुद्गल का है पुद्गल के निमित्त से होते हैं। ये पुद्गल लेने परद्रव्य को नहीं लेना उसमें कर्म के उदय को लेना बिना कर्म के उदय के चारित्र मोहनी के उदय के वहां राग होता ही नहीं है कर्म नहीं कराता है ये भी ध्यान में रखना। फिर भी इसलिए वो पुण्य पाप के भावों को कर्म के खाते में डाल दिया पुद्गल का कह दिया। तो यहां हमें तो शुद्ध स्वभाव का ज्ञान करना है ऐसे शुद्ध स्वभाव की ज्ञान और दृष्टि उसमें अपनत्व स्थापित करना है ना दृष्टिया ने यह मैं हूं जो त्रिकाली एक रूप भाव ये तो कर्म का उदय पलट जाएगा और कोई अन्य अन्य भाव होंगे कभी पुण्य के परिणाम कभी पाप के तो हमें अपना अनुभव करना है तो हर हमेशा हर समय बदलने वाले का अनुभव करना है क्या कैसे करना है अनुभव होगा ही नहीं क्योंकि स्थिरता होगी नहीं उसमें टिकना है किसी में तो जैसे हिलते डुलते में हम नज़र भी स्थिर नहीं कर सकते वैसे यहाँ हमको जो त्रिकाली एक रूप जो ज्ञायक भाव है जो अपना निर्मल स्वभाव है उसमें मैं पना उसमें अपनत्व मुझे मैं कौन हूँ ये नक्की करना है तो हमने ये सबको मिलकर मैं माना है अब जो मैं सचमुच मैं हूँ उसमें मैं पना रखना है, क्योंकि कल ही बात की ना आप, जो वो निकल जाता है वो मेरा नहीं है। तो सिद्ध भगवान में जो है वही मेरा स्वभाव है, जैसे वे है वैसा मैं हूँ, इसलिए वो राग में अपनत्व जो है वो छोड़ देना है।
देखो यहाँ पर एक बात विशेष रूप से अपने ख्याल में रखने की आवश्यकता ये है कि हम दो ग्रंथ एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ यानी एक के बाद एक, प्रवचन सार और समय सार। तो यहाँ समय सार जो है वह द्रव्य, मतलब जिसको हम कहते हैं कि दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, यानी द्रव्य दृष्टि से, यानी जैसा वस्तु का स्वभाव त्रिकाल स्वभाव है उसकी बात इसमें मुख्य रूप से बताई जा रही है। तो यहाँ हमेशा द्रव्य के स्वभाव के साथ, यानी जिसको हमने शुद्ध नय का विषय जो बताया है उसी की बात यहाँ पर विशेष रूप से प्राधान्य से हो रही है। तो यहाँ दृष्टि प्रधान ग्रंथ है ऐसा कहा गया, और वहाँ पर ज्ञान प्रधान ग्रंथ प्रवचन सार, यानी ज्ञान का स्वभाव कैसा है कि वो स्व भी जाने और पर भी जाने। तो जो तो क्या क्या जाने, तो पूरे लोकालोक को जाने। तो ज्ञान प्रधान कथन में ज्ञान की अपेक्षा से कथन करेंगे और वहाँ वो बात होगी। तो अभी जो आपने बताया था स्फटिक को, तो स्फटिक की जो बात बताए तो वहाँ ये भी अपेक्षा लग सकती है कि हमारी दो आंखें हैं, तो एक है द्रव्य दृष्टि की, मतलब दृष्टि जैसी है, द्रव्य जैसा है उस दृष्टि से देखने वाली, और दूसरी आंख है पर्याय जैसी है उस दृष्टि से देखने वाली। अब यहाँ क्या होगा, जब वक्ता है या जो कोई शास्त्र का टॉपिक चल रहा है वहाँ हम द्रव्य दृष्टि की बात कह रहे हैं और हम उसको पर्याय दृष्टि से देखें तो बात अपने ख्याल में नहीं आएगी। तो वो अपनी जवाबदारी है कि यहाँ किसकी बात चल रही है, क्या पर्याय की बात कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता था, मैं मेरी बात बताऊंगा कि हम बहुत साल पहले हुकमचंद जी बारिल यहाँ आए थे, सिमंदर भगवान मंदिर है ना उधर मुमुवादी में, तो वहाँ प्रवचन करते थे, कहते कि मैं तो राग से रहित भगवान आत्मा हूँ, पहले पहले 1976 आदि वो साल में, मैं ईश्वर हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा ऐसा सब दृष्टि प्रधान कथन चल रहा था। तो क्या बात करते, अरे यहाँ तो मिनट मिनट में हमको ये तकलीफ हो गई, बैठने में ऐसी तकलीफ हो गई, मैं राग द्वेष वाला हूँ और ये काय का मैं भगवान हूँ, ये कुछ भी बोलते हैं, अपने को बराबर समझता नहीं, इनके ऊपर भरोसा देने जैसा नहीं, ऐसा अपने को लगता था। क्यों, वो बता रहे थे कि तेरा त्रिकाल स्वरूप कैसा है और हम अभी पर्याय में कैसा ऐसा सोच रहे थे। तो वो जो बात बता रहे हमें गले उतरे ही नहीं, फिर आखिर में उन्होंने ये आंख बंद करके देखो, ये आंख बंद करके देखो, ये सारी बातें हमें उस समय बताई थी कि वो बता रहे इस आंख की बात और तू देख रहा है इस आंख से, तो तुझे वो कैसे पल्ले पड़ेगी बात, ख्याल में है। तो वैसा यहाँ हमें ये समझना है कि यहाँ जो आपने पूछा ना कि उसमें जो पर्याय है, पर्याय बिल्कुल है, पर्याय में राग हो रहा है, अगर पर्याय में राग होता ही नहीं था तो उसको तो अभी फिलहाल वितरागता पूर्ण होनी चाहिए, ख्याल में है ना। चलो ये एक प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा है गया, लेकिन जब तक हमारा पेट नहीं भरता है तो हम काहे को नहीं बोलेंगे, आपका भरे या नहीं भरे। नहीं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, दूसरा अन्य कुछ नहीं है। देखो अभी यहां से हम नीचे से छठी सातवीं लाइनें देखो, ये हमने देखा ना पर्याय छे पर राग नथी, ये बात हो गई ना, उसके आगे जेम अग्नि नी पर्याय अग्नि मां रही, क्योंकि अग्नि द्रव्य यहाँ गिनाए तो वो उसकी उष्णता जो है वो उसमें रही, पन तेनो आकार एटले प्रतिबिंब जे अरीसामा देखाय छे ते अग्निनी पर्याय नथी, पन ए तो अरीसानी एटले दर्पणनी स्वच्छतानी आकृतिनी पर्याय छे, तेम भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप छे, ए ज्ञाकार स्वनु ज्ञान करे छे। ये ज्ञान स्वरूप जो भगवान आत्मा है वो क्या करते हैं, स्वनु ज्ञान करे, अने दयादान व्रत आदि विकल्पनुं ज्ञान करे छे, ए परनुं ज्ञान थाय छे, ए पोतानी पर्यायमां थाय छे। यानी वो राग से हुआ है ऐसा नहीं, अपने ही स्वयं में वो पर्याय उत्पन्न हुई। किसको? स्व को भी जाने और पर को भी जाने, बताया ना। यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप छे, एमां नियाकार स्वनु ज्ञान करे अने साथे दयादान व्रत आदि इसका भी ध्यान करे, पण ए परनु ज्ञान थाय छे, ए पोतानी पर्यायमां थाय छे। ए परनु ज्ञान परमा तो थतुं नथी, पण परने लीधे पण थतुं नथी। ये क्या कहा? ये राग द्वेष हो रहे उसमें ज्ञान नहीं हो रहा है, वो तो ठीक, लेकिन वो राग द्वेष हो रहे हैं इसलिए यहाँ ज्ञान हो रहा है उसका, ऐसा भी नहीं है। ख्याल में? पण परने लीधे पण थतुं नथी, पोताना ज्ञाननी स्वच्छत्व शक्ति ने लीधे थाय छे। यानी अपने में स्वच्छत्व नाम की अपने में भी एक गुण है, शक्ति है, उसके कारण ये पर भी जानने में आता है। स्वनु ज्ञान थयुं अने पर एटले रागनु ज्ञान थवुं, शू कीधुं? स्वनु ज्ञान थवुं अने पर एटले रागनु ज्ञान थवुं, ए तो पोतानी ज्ञाननी परिणतिनो स्वपर प्रकाशक स्वभाव छे। राग छे तो रागनु ज्ञान थयुं एम नथी, परंतु ते समये एटले राग थाय ते समये पोतानी ज्ञाननी पर्याय स्वयं रागना ज्ञेयाकार रूपे परिणमती थकी ज्ञानाकार रूप थई छे। ये मैंने ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार की बात बताई ना, तो वहाँ राग जो उत्पन्न हुआ वो ज्ञान जान रहे किसको? राग को। तो राग रूप यानी रागाकार वह भले हुआ है ऐसा हम कहेंगे, तो है तो वह ज्ञेयाकार है, ज्ञानाकार, सॉरी, बराबर। फिर से सेकंड लाइन, परंतु ते समय पोतानी ज्ञाननी पर्याय स्वयं रागना ज्ञेयाकार रूपे परिणमती थकी ज्ञानाकार रूप थई छे। ते पोताती छे, पोतामां थई छे, परती एटले ज्ञेयती नहीं। अरूपी आत्मा ने तो पोताने अने परणी जानवा वाली ज्ञातृता छे, एटले ज्ञातापणू छे। ए ज्ञातृता पोतानी छे, पोताथी सहज से, राग थी नहीं अने रागनी पण नहीं। ए राग छे तो ज्ञातृता एटले जाणपणू छे एम नथी। देखो कितनी क्लैरिटी देते, एकदम बिल्कुल साफ करके समझा रहे हमें। वस्तुनु सहज स्वरूप ज आवू छे। अहो आचार्य देवे मीठी मधुरी भाषा में वस्तु भिन्न पाड़ी ने बतावी छे, एमा ठर तो तारू कल्याण थशे। देखो और अभी और समझा रहे, जेम रूपी दर्पणनी स्वच्छता में स्वपरनो प्रतिभास करवानी पोतानी शक्ति छे, एटले दर्पणनी स्वयंनी शक्ति छे, तेम ज्ञाननी पर्याय में पोतानुं ज्ञान थवुं अने पर एवा व्यवहार रत्नत्रयनु एटले रागनु ज्ञान थवुं, ए स्वपरनु जाणवारू परिणमन थवुं, ए पोतानी शक्तिना कारणे छे। पण व्यवहार रत्नत्रयना रागना, अरे आगे दिया है, पण रागना एटले व्यवहार रत्नत्रयना कारणे नहीं, एम रागमा पण अने रागमा पण नहीं। एने राग भी जानता नहीं, जानेगा तो ज्ञान ही जानेगा, स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा। 12वीं गाथा में आवे छे ने के ते काळे व्यवहार जानेलो प्रयोजनवान छे, व्यवहार नयो परिज्ञायमान मानह तदात्वे प्रयोजनवान, एनुं स्पष्टीकरण छे। पोतानी ज्ञाननी पर्याय पोताने जाने छे अने रागने जाने छे, राग छे तो जाने छे एम नथी। ये कैसा हमको समझना है? केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, तो लोकालोक है इसलिए वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। अरे भाई ज्ञान का ही ऐसा उघाण है कि लोकालोक सहज रूप से उनके ज्ञान में झलकते हैं। तो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल वही बात, सेकंड लाइन, પોતાની જ્ઞાનની પર્યાય પોતાને જાણે છે અને રાગને પણ જાણે છે. યા તો ભાવ કર્મ કો લિયા હૈ ને પહેલે. રાગ છે તો જાણે છે એમ નથી, પણ તે કાળે પોતાની જ્ઞાન પર્યાય જ એવી સ્વપર પ્રકાશક પ્રકટ થાય છે. આવો માર્ગ ભાઈ, હવે આ વાણિયાને વેપાર કરવો, બાયડી છોકરાનું કરવું, એ આવું સાંભળવા બેસવું? ધૂળમાં વેપાર આદિ કરતો નથી તો કહેતે કે વો વ્યાપાર ધંધા કરેગા એ સુનને કો આયેગા ઇધર કિસકો ફુરસત હૈ એસા સમજાતે. દિવ્યાબેન બહુ કુછ સોચ રહી હૈ, અભી વાણિયા યાની હમ ભી વાણિયા હૈ ને ઓર ક્યા હૈ, ક્યા કહે રહે હૈ કે આ વાણિયાને વેપાર કરવો, બાયડી છોકરાનું કરવું, એ આવું સાંભળવા બેસવું? ધૂળમાં વેપાર આદિ કરતો નથી, એ તો રાગ અને દ્વેષ કરે છે. શું વેપાર કરી શકે છે? યાને શું આત્મા વેપાર કરી શકે છે? પરની ક્રિયા કરી શકે છે? ના, એ પર તો જડ છે. પણ પૈસા તો કમાવી શકે છે ને વિરેશભાઈ? પૈસા તો કમાવી શકે છે ને? અરે પર્યાય દૃષ્ટિ સે હા પડો એસા કહેને મેં આતા હૈ વો. પરદ્રવ્ય કા તો પરિણમનીય જીવ કરી નહીં સકતા, ઇસલિયે કહેતે હૈ એ પર તો જડ છે, તો પૈસા કોણ સા હલકા હૈ, વો ભી જડ જ છે. ઘડાનું, હા એ 2-3 મિનિટ હૈ, ઘડાનું દૃષ્ટાંત પહેલા દઈને હવે દર્પણનું દૃષ્ટાંત આપ્યું. ઘડાના દ્રષ્ટાંતમાં તો જેમ વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શમાં ઘડો છે અને ઘડામાં વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ છે, તેમ પુણ્ય પાપમાં હું છું અને મારામાં એ એટલે પુણ્ય પાપ છે એવી અનુભૂતિ એ અજ્ઞાન છે એમ કહ્યું. આમાં કહે કે લોકાલોક છે તો કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય છે એમ નથી, જ્ઞાનની સ્વપર પ્રકાશક પરિણતિ એ પોતાની પોતાના સ્વભાવથી થાય છે, લોકાલોકથી નહીં. સ્વપરનો પ્રતિભાસ થવો એ પોતાનું સહજ સામર્થ્ય છે, કોઈના કારણે નથી, કોઈના મહેરબાનીથી નથી, નિમિત્તથી નથી. પર છે તો પરનો પ્રકાશ થાય છે એમ નથી, પરનો પ્રકાશ અને પર જાનને મેં આતે હૈ એસા નહીં હૈ. આત્માનો તો સ્વપરને જાણનારી જ્ઞાતૃતા છે અને કર્મ અને નો કર્મ પૂદગલ ના જ છે એમ જણાય છે. રાગાદિ કર્મ અને શરીરાદિ નો કર્મ પૂદગલના છે એમ પોતાથી જાણે અથવા પરના ઉપદેશથી. યાને એ કલમ વાત આવી હતી ને, સ્વયં બુદ્ધ બોધિત બુદ્ધત્વ, જેનું મૂળ ભેદ વિજ્ઞાન છે એટલે રાગની અને શરીરાદિ પરથી ભિન્ન પડવું એ જેના મૂળમાં છે એવી અનુભૂતિ ઉત્પન્ન થશે ત્યારે જ આત્મા પ્રતિબુદ્ધ થશે. અભી યહાં દેખો એક કળશ 19 લિખા હૈ ના,
ગાથા કરના,
તો વહાં ગાથા કરના આપને ક્યાં લિખા હૈ, ગાથા લિખા હૈ,
ગાથા 19 કરના,
ગાથા હી ચાહીએ. ગુજરાતી મેં કલશ લિખા ગયા હૈ ઓલ્ડ એડિશન મેં, કલશ ગલત હૈ,
કલશ નિકાલ કે ગાથા લિખો વહાં,
કલશ હટા કર ગાથા 19 ભાવાર્થ. જાવાની કે જ્ઞાન તૈ સુજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકણમો સદા.